ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نهل والد ولده نهلا أفضل من أدب حسنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اس کا سلسلہ ہر آن بارش کی طرح جاری ہے. بقول حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ یہ بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہے. صحرا کے ریت کے ذروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جب ایک نعمت کا یہ حال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی ہر نعمت کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر اس کی ناشکری کرو گے تو میری گرفت اور میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مختلف نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان میں ایک بہت عظیم نعمت وہ ہے جو اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان سے پوچھو اس کی کیا قدر و قیمت ہے. بے اولاد اولاد کو حاصل کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے ہیں، بہت سے تو اپنا ایمان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی نسبت سے بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے. شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت جو عطا فرمائی ہے اس نعمت کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان کو ادا کرنا، یہ ہے حقیقت میں اس نعمت کا شکر. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی نعمت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لازم کی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اس کو خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ ہے مال کی نعمت کا شکر. علم دیا ہے تو اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، یہ ہے علم کی نعمت کا شکر. اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے. اولاد کی جو نعمت ہے، اولاد کی نعمت سے بھی کی نسبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن کو ہر آدمی جانتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اہل و عیال کی نسبت سے ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری، ان کے رہنے سہنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ہر آدمی جانتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. और आजकल तो देखो तो इसी में सारी दुनिया जो है वो घूम फिर रही है। यही एक जिम्मेदारी है जिसको लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको अदा कर रहे हैं। उसमें भी एक पहलू है, एक तो ये है कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इनके इन हुकूक को अदा करने का हमें हुक्म दिया गया है। इस एतबार से हम ये नियत करें कि अल्लाह ताला ने अपने अहलो आयाल के का नफका, उनका खाना पीना, उनका पहनना ओढ़ना, उनके रहने सहने का इंतज़ाम मेरे ऊपर लाजिम किया है, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ और अपने अहलो आयाल के इन हुकूक को अदा कर रहा हूँ, तब तो ये काम सवाब ही सवाब है। लेकिन ये चीज़ जब तक के अल्लाह वालों की खिदमत में, उनकी सोहबत में आदमी नहीं रहेगा, वहाँ तक हासिल नहीं होगी। करते तो हैं सब, लेकिन उनको अंजाम देते वक्त दिल में इस नियत का मुस्तहज़र होना, दिल में ये बात पेश नज़र रहना कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, ये हर एक को हासिल नहीं होती। जिम्मेदारी अदा हो जाएगी, लेकिन उस पर जो सवाब है वो उसी सूरत में मिलेगा जबकि अल्लाह के हुक्म को बजा लाने की नीयत से इस काम को अंजाम दिया जाए। जिम्मा पूरा हो जाएगा, कल को कयामत में अल्लाह तआला की तरफ से ये मुतालबा नहीं होगा कि तुमने अपने अहले वायाल के इन हुकूक को अदा नहीं किया, और इनके अदा न करने पर अल्लाह की तरफ से जो गिरफ्त हो सकती थी, जो सजा हो सकती थी वो नहीं होगी। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की नीयत दिल में नहीं है तो उस पर जो अजर व सवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अब ये तो मैंने कहा नहीं, ये वो हुकूक हैं जिनको हर आदमी जानता है और हर आदमी उसको पूरा करने की कोशिश करता है। यानी ये कोई मुसलमान की खासियत नहीं, जो गैर मुस्लिम हैं आपके इस मुल्क में, आपके इस शहर में, दुनिया में जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी अपने औलाद के और अपनी अहलो आयाल के इन हुकूक को अदा करने का एहतमाम करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा करते हैं। और फिर इंसान की भी खसूसियत नहीं, जानवर, हवा में उड़ने वाला परिंदा और जंगल में रहने वाला दरिंदा और हर जानवर अपनी औलाद के इन हुकूक को अदा करने का एहतमाम करता है। एक चिड़िया का बच्चा भी जब ताज़ा ताज़ा पैदा होता है और उसमें दाना चुगने की और पानी पीने की सलाहियत नहीं होती, उसकी माँ दाना लाकर उसके मुंह में डालती है, उस पानी लाकर उसके मुंह में डालती है। ये चिड़िया भी अपनी बच्चों के इन हुकूक को अदा करने का एहतमाम करती है, उनके रहने के लिए घोंसला बनाती है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसका इंतज़ाम करती है। तो हमने अगर अपनी औलाद के लिए इन चीज़ों का एहतमाम किया तो कौन सा तीर मारा, हमने अपना लेवल, अपनी सतह इन जानवरों से ऊंची नहीं बनाई। इस मामले में हम अगर ये दावा करते हैं कि हमने अपने औलाद के इन हुकूक को अदा किया, खाने पीने, रहने सहने और रहाइश के, तो एक हवा में उड़ने वाली चिड़िया भी, जंगल में रहने वाला दरिंदा भी ये दावा कर सकता है कि ये काम तो मैं भी करता हूँ। अलबत्ता अल्लाह ने इंसान को इन जानवरों के मुकाबले में अकल, समझ, होशियारी ज़्यादा अता फरमाई है, इसलिए इंसान अपनी औलाद के इन हुकूक की अदायगी के मामले में जो है जिस जुजरसी से और जिस एहतमाम से काम लेता है, ये जानवर उतना कर सकते नहीं है। लेकिन उनके बस में जितना है, अल्लाह ने उनको जितनी सलाहियत अता फरमाई है, अल्लाह ने उनको जितनी समझ दी है, जितनी अकल दी है, उसके मुताबिक तो वो भी करते ही हैं। अब हमने अगर ये तीन हुकूक को अदा करने का एहतमाम किया तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया। अब हम पर एक मजीद जिम्मेदारी है हमारी। देखो ये तो वो ज़रूरतें थी जो हर जानदार की ज़रूरतें, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, खाना पीना, रहना सहना और जो है पहनना, यानी सर्दी बरसी, सर्दी गर्मी से बचाव, ये वो तीन ज़रूरतें हैं जो हर जानदार को पेश आती हैं और उसके मुतालिकी उस ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हम जहाँ एक जानदार हैं वहाँ इंसान भी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया और तमाम जानदारों में अल्लाह तबारक तआला ने हमको फजीलत अता फरमाई, सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाया। एक इंसान होने की हैसियत से, एक इंसान के अंदर जो इंसानियत के आदाब और अखलाक होने चाहिए वो भी जो है वो हमें अपनी औलाद में पैदा करने की ज़रूरत है। यानी हमारी औलाद एक इंसान होने के नाते इंसानी जो है खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए, उनको उनके अंदर पैदा करने के लिए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक कदम और आगे, अल्लाह ताला ने जहाँ हमको इंसान बनाया वहाँ मुसलमान भी बनाया, ईमान और इस्लाम की नेमत से नवाजा। एक मुसलमान को जिन खूबियों से, जिन कमालात से, जिन औसाफ से, जिन अखलाक से आरास्ता होना चाहिए, अपनी औलाद के अंदर वही औसाफ, वही कमालात, वही खूबियाँ, वही अखलाक पैदा करने के लिए मेहनत करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब हम में से हर एक सोच ले कि हम इन जिम्मेदारियों की अदायगी का कितना एहतमाम करते हैं। मैंने जैसा कि अर्ज किया, हर शख्स पहली तीन काम तो करता है, उसके बाद के दोनों मरहले में अक्सर वो हैं जो बिल्कुल सिफर हैं, नाकाम हैं। अपनी औलाद को एक इंसान होने के नाते इंसानी औसाफ, इंसानी खूबियों से आरास्ता करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं की जाती। और फिर उससे एक कदम आगे, हमारी औलाद साहिब ईमान है, ईमान वाले होने की हैसियत से ईमान के तकाजों को पूरा करने के लिए उनको जो जो चीज़ें हमें सिखलानी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए से हमें इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे फरमाया। अभी आपके सामने मैंने चंद आयतें और चंद अहादीस पढ़ी थी, बस ज़्यादा तफसील नहीं करूँगा, उन्हीं का तर्जमा कर देता हूँ। मैंने एक तो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को, अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। देखो इस आयत में पहला हमारा नंबर है, पहला हमारा, हमें खुद गोया उन अहकाम को सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जिस शरीयत को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उनमें दो तरह के अहकाम हैं। कुछ काम तो वो हैं जिनका करना ज़रूरी करार दिया गया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दूसरे अखलाक आमाल वगैरह, और कुछ काम वो हैं जिनसे बचना ज़रूरी करार दिया गया। जो काम करने ज़रूरी हैं उनको अवामिर कहा जाता है, जिनसे बचना ज़रूरी है उनको नवाही से ताबीर किया जाता है। तो पहले तो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक ताला के वो अवामिर, वो काम जिनको करने का हम पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया है, लाजिम किया गया है, उनको जानना हमें चाहिए, ज़रूरत है। जानने के बाद मरहला आता है काई का, अमल का। पहले तो जानेंगे नमाज क्या है, नमाज सीखो। जब नमाज को फर्ज किया गया तो ऐसे ही तो आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा जब तक के नमाज के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल न कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का पूरा तरीका बतलाया। कुरान में तो अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात हुक्म दे दिया गया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी वो सब कुछ किसने बतलाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, यहाँ तक कि आपने अपने अमल के ज़रिए से नमाज का तरीक़ा बतला कर सहाबा को फरमाया, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूँ इस तरह तुम नमाज पढ़ो। तो ये वह करने की चीज़ों की बात हुई। जानना चाहिए और जानने के बाद दर्जा इकाई का अमल का, तो उसके मुताबिक करना है। हम इसी तरीके से जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है उनको जानने की ज़रूरत है। जानेगा तो बचेगा। एक आदमी जाने कि अभी जीना करना हराम है, अल्लाह नाराज़ होते हैं, उस पर इतना सख्त अजाब है, तब तो अपने आप को जीना से बचाएगा। तो जीना क्या है? जीना की हकीकत से भी तो वाकिफ होना चाहिए। बहुत से जीना की किस्में वो हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते। आँख से किसी नामहरम को देखना यह आँख का जीना है। बुखारी शरीफ की हदीस में है, अलैनान तजनियान व जिनाहुमा नज़र, दोनों आँखें जिना करती हैं और उनका जिना नामहरम को देखना है। कान जिना करते हैं, उनका जिना नामहरम की बात को सुनना है। जबान जिना करती है, जबान का जिना नामहरम के साथ बात करना है। हाथ जिना करता है, हाथ का जिना नामहरम को छूना है। पांव जिना करते हैं और पांव का जिना नामहरम की तरफ चल करके जाना है। जिना की ये किस्में कौन लोग, कितने लोग हैं जो जानते हैं? आजकल हमारा नौजवान तबका, नई नस्ल, एक मरतबा हमारे इसी अफ्रीका के इस मुल्क में एक जगह जाना हुआ, बयान हुआ, तो बहुत सारे नौजवान बयान के बाद मेरे साथी मुफ्ती महमूद साहब थे, मैं तो बूढ़ा आदमी, मुझसे तो ज़्यादा कितने जुड़ेंगे नौजवान। अल जिन्स यमील जिन्स, जवान जवान की तरफ माइल होता है। उनसे बाद में पूछने लगे कि हमने तो आज ही सुना कि ये भी कोई जीना है, आज ही सुना। हमारे अहले इल्म को भी चाहिए कि इन चीज़ों से हमारे नौजवानों को वाकिफ करें कि ये हैं जिनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। तो बहरहाल मैं यूँ कहना चाहता था कि जीना क्या है और उससे बचना उसी वक्त होगा जब जीना की हकीकत से वाकिफ। तो गुनाह के काम जिनसे बचने का शरीयत ने हुक्म दिया उनसे वाकिफ होने की ज़रूरत है और फिर बचा जाएगा। मैं कह रहा था कि पहले तो पहला दर्जा तो किसका है? अपना, वो अनफुसक, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। नंबर दो पर आगे वह अहली को, अपने घर वालों को, अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वो कैसे बचाएंगे? उनको बचाने का यही तरीक़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबा से इस आयत करीमा की तशरीह और तफसीर में जो अक़वाल मनकूल हैं उनका खुलासा यही है कि शरीयत के अवामिर से खुद भी वाकिफियत हासिल करो और अपने औलाद को भी वाकिफ करो। शरीयत के अवामिर पर खुद भी अमल करने का अहतमाम करो और अपनी औलाद को भी अमल करने की आदत डालो। शरीयत के नवाही से खुद भी वाकिफियत हासिल करो और अपनी औलाद को भी वाकिफ करो। उससे बचने का खुद भी अपने आप को आदि बनाओ, मश्क कराओ और अपनी औलाद को भी उससे बचाने का अहतमाम करो। अपनी औलाद को इन चीज़ों से वाकिफ करना, इसी का नाम है तालीम। और वाकिफ करने के बाद उस पर अमल का आदि बनाना, अमल की प्रैक्टिस कराना, यह है तरबियत। यानी पहले तो हम अपने औलाद को सिखाएंगे कि नमाज क्या है, नमाज का तरीक़ा उससे वाकिफ करेंगे, क्या क्या चीज़ें नमाज में करनी ज़रूरी है, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज की सुन्नतें क्या हैं, नमाज के मुस्तहबात और आदाब क्या हैं, वो सब बताएंगे। पूरी नमाज गोया हर जूज अलग और उसके बाद नमाज का पूरा जो खाका है करके बताएंगे। ये सिखाना ये है तालीम, और उसके बाद इस नमाज का आदि बनाना अपनी औलाद को। आदि कैसे बनेगी? खाली कह देने से नहीं बनेगी। आप आइए मस्जिद में और आपकी औलाद की उम्र 7 साल के ऊपर है तो अब बच्चों को भी कहो बेटा चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। मुरु सिबियानकुम बिस्सलाते इदा बलगु सबा, हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद 7 साल की उम्र को पहुंच जावे तो उनको नमाज के लिए कहो। वज़रिबूहुम अलैहा इदा बलगु अशरन, और नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो जब उनकी उम्र कितनी हो जाए 10 साल। आजकल 5 साल के बच्चे को लेकर तो आएगा बाप, लेकिन 10 साल वालों को लेकर नहीं आएगा। 5 साल वाला ऐसा आता है जो न खुद नमाज पढ़ता है न दूसरों को नमाज पढ़ने देता है, और कोई कह दे तो आस्तीन चढ़ाएगा बाप कि मेरे बेटों को क्यों नहीं लाने देता तुमने। ये हमारा मिजाज बन गया। शरीयत के अहकाम से वाकिफ तो है नहीं, न अमल करना चाहते हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे को नमाज का आदि बनाना। एक दिन एक नमाज में अपने साथ लेकर आओगे, ईद की नमाज में अपने साथ लेकर के आओगे तो क्या आदि बनेगा नमाज का? नहीं। रोजाना 5 नमाजों में जमात के अंदर लेकर के आओ। कब तक? 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, एक मुद्दत तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना मुसलसल अपने साथ लेकर के आओ कि अब आपका दिल ये गवाही दे। क्या दे? कि अब मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरा बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में आएगा। ये है तरबियत, और तरबियत उस वक्त मुकम्मल होगी। आज कितने बाप हैं जो अपने औलाद को इस तरह नमाजी बनाने का एहतमाम करते हैं। ये तो अल्लाह का एहसान जानो कि ये मकतब का सिलसिला जो जारी है, अभी इस बच्चे ने कुरान पढ़ के सुनाया, समझाया क्या नहीं। इन मकातिब के अंदर हमारे उलमा इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये काम तो शरीयत के अहकाम से वाकिफ करने की जिम्मेदारी औलाद को किसकी थी? माँ बाप की थी। शरीयत ने तो माँ बाप पर जिम्मेदारी डाली है, लेकिन हमारे बड़ों ने, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, ये सिलसिले मकातिब के कायम किए। क्योंकि लोग आम तौर पर वही जो है कमाई के अंदर ऐसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे मशगूल हैं कि सुबह को उठते हैं तो शाम तक उन बेचारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपनी जान की खबर लेने की खबर ये नहीं है। अब ये बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने जो है ये मकातिब के सिलसिले कायम किए। जो अहले इल्म हैं वो मुस्तकिल इसमें लगे हुए हैं माशाल्लाह। वो कुरान पढ़ना भी सिखाते हैं, शरीयत के अहकाम से वाकिफ भी करते हैं। उसी ज़िम्न में नमाज क्या है, नमाज का पूरा तरीका, वुजू करना नमाज का तरीका सब बतला दिया। और जब तक के मकतब में पढ़ते हैं वहाँ तक उस्ताद मस्जिद में लाने की जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं। उन बच्चों से रोज़ाना पूछताछ होती है कि कल तूने नमाज पढ़ी थी या नहीं। बहुत सी जगह तो माशाल्लाह बहुत से मुदर्रिसीन जो हैं हाजिरी बनाते हैं, हाजिरी का रजिस्टर वो बच्चों का ही कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, गैर हाजिरी पर उनकी गिरफ्त करते हैं। लेकिन कब तक? 2 साल 3 साल जब तक मकतब में आया, उसके बाद तो जनाब फारिग जब हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी तरफ लौट करके आती है। लेकिन यहाँ तो बाप का हाल ही ये है कि बाप खुद नमाजों का अहतमाम नहीं करता, जमात का अहतमाम नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम नहीं करता, अपने आप को गुनाहों से बचाने का अहतमाम नहीं करता, तो फिर औलाद को क्या सिखाएगा? ये इस ज़माने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। और ये औलाद की तरबियत तो इस ज़माने का इतना अहम मसला बन गया, हमारे लिए नहीं जो गैर मुस्लिम हैं, ये तरक्की याफ्ता कौमें उनके लिए भी अपनी औलाद की तरबियत का मसला इतना संगीन बन चुका है कि वो लोग आज उसका हल नहीं पेश कर सकते। उनके उकला दानिश्वर इस मसले के लिए बैठते हैं, सोचते हैं क्या क्या तदबीरें इख्तियार की जाए, लेकिन कोई तदबीर कारगर नहीं होगी। तदबीर तो वही कारगर होगी جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. بچپن سے اس کا اہتمام, بلکہ بچپن سے نہیں, پیدا ہونے سے پہلے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کیا تدبیریں بتائی معلوم ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ, بھائی دیکھو آپ کو باغ لگانا چاہتے ہیں کسی عمدہ پھل کا, تو باغ تو پودا تو بعد میں لگائیں گے, پہلے آپ عمدہ قسم کی زمین تلاش کریں گے, اس کے لیے عمدہ بیج تلاش کریں گے, عمدہ پانی کا انتظام کریں گے, اس کے بعد آگے مرحلہ آتا ہے. یہاں اولاد کو نیک چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے زمین کون ہے؟ بیویاں. ان نیک بیوی کی تلاش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, حضور فرماتے ہیں, تنکح المرأۃ لأربعین, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین, کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح جو کیا جاتا ہے جن وجوہات کے پیش نظر, ایک تو چار وجہیں بتلائی, ایک تو مال دیکھ کر. بہت سے لوگ مال دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتے ہیں کہ مالدار کو لے کر کے آؤں گا تو میرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا, بہت سے لوگ ہیں وہ جو خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, آج کل زیادہ تر یہی ہے, اور بہت سے وہ ہیں جو اونچا نسب دیکھ کر. اب تو نسب وسب تو ختم ہو گیا ہمارے زمانے کے اندر, کون پوچھتا ہے اس کو. ایک زمانہ تھا کہ نسب کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, نسب کو دیکھ کر کرتے ہیں. اور چوتھے وہ رہے جو اس کی دینداری کو دیکھ کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاظفر بذات الدین, دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کر. اب دیندار کے ساتھ ساتھ اگر وہ خوبصورت بھی ہے, اونچے نسب خاندان کی بھی ہے اور مالدار بھی ہے, تو نورن علا نور, دونوں ہاتھ میں لڈو, چاروں ہاتھ میں لڈو, کوئی نہ نہیں ہے. لیکن اگر مقابلہ آ جائے, ایک طرف دیندار ہے دوسری طرف مالدار ہے, ایک طرف دیندار ہے دوسری طرف خوبصورت ہے, ایک طرف دیندار ہے دوسری طرف اونچے خاندان کی ہے, تو ہمیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دیندار کو ترجیح دیجئے. کیوں؟ یہ دیندار کیوں پسند کروائی گئی؟ اسی کے ذریعے سے تو آپ کی اولاد آنے والی. دیندار عورت کی گود میں جو اولاد پرورش پائے گی وہی تو دیندار بنے گی. ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کیا, یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسی میں اپنے آپ کو ناکام کر دیا. تو بہرحال خیر, یہ تو ایک مستقل موضوع ہے, اس کو میں کھولنا نہیں چاہتا, لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے اولاد کو نیک بنانے کا کہاں سے اہتمام کیا. اولاد کو نیک بنانے کا یہاں تک سے اہتمام کیا کہ ہمیں اپنی کمائیوں کو جو ہے حلال اور پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسی کمائی ہوگی ویسی اولاد ہوگی. کیوں؟ اس کمائی کے ذریعے سے آپ غذا خریدیں گے, وہ غذا آپ کے پیٹ میں جائے گی, اسی سے خون تیار ہوگا. پاکیزہ خون جب تیار ہوگا تو اسی پاکیزہ خون سے مادہ منویہ بھی پاکیزہ بنے گا, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ نیک. اور اگر حرام کی کمائی ہے, ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کیا ہے, تو اب اس سے جو مال خریدیں گے اور جو غذا پیٹ میں جائے گی, اس سے جو خون بنے گا, اس سے جو جذبات پیدا ہوں گے, اور اس سے پھر جو مادہ منویہ تیار ہوگا, جو جیسا جیسا جو ہے مٹیریل ہوگا ویسی چیز کیا ہوتی ہے؟ تیار ہوتی ہے. آپ اعلیٰ اور عمدہ قسم کی کرسی تیار کرنا چاہتے ہیں تو مٹیریل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ عمدہ. آپ نیک اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مٹیریل بھی عمدہ ہونا. یہ سب مٹیریل ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس کی طرف آج کتنے ہیں جو دھیان دیتے ہیں. آج تو پیسہ چاہیے, جس طرح چاہو لے لو, بس ایک ہی ہم نے اپنا مقصود بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی, بخاری شریف کی روایت ہے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام, کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جو مال حاصل کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال سے لے رہا ہے یا حرام سے. آج یہی زمانہ آیا. بھائی ہمیں تو حلال غذا حاصل کرنے کی تاکید کی گئی, جیسی اولاد ہوگی, جیسی غذا ہوگی ویسی اولاد ہوگی. ایک بزرگ تھے, नेक बंदे अल्लाह के, उनका बच्चा जो है शरीर था। किसी ने कहा, हजरत आप तो बहुत नेक हैं, आपका ये बच्चा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, भाई एक मर्तबा एक मुश्तबा गिजा खा ली थी। मुश्तबा यानी डाउटफुल, खालिस हराम नहीं, हराम का जिसमें शक हो, ऐसी गिजा उसको मुश्तबा कहते हैं, खाली थी। उसके बाद तबीयत में जो है तकाजा पैदा हुआ बीवी के पास जाने का, उसी नुतफे से ये बना है, उसके अंदर ये असर आया है। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से सुना, और किताबों में भी मौजूद है कि एक मरतबा एक आदमी का निकाह हुआ, बीवी से शोहर ने जो है वहाँ अहद किया कि देख हम और तुम जो है हलाल गिज़ा का अहतमाम करेंगे और हर चीज़ जो है शरीयत के मुताबिक, ताकि हमारी औलाद भी कैसी हो, नेक हो। आपस में मुआहदा किया एक दूसरे के साथ। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होने के बाद बच्चे ने चोरी की, शौहर तलवार लेकर बीवी के पास गया कि सच सच बचा बता, हमने जो मुआहदा किया था तूने उस मुआहदे को पूरा करने में क्या खयानत की थी? मैंने तो किया नहीं। तो बीवी ने कहा, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस के दरख्त जो है पड़ोसी के बाड़े में एक बेरी का दरख्त था, उसकी एक टहनी हमारे घर के पास थी, उसमें से एक बेर हमल के ज़माने में मैंने लेकर के खा लिया था, उसका असर है। तो कहने का हासिल यह है कि भाई ये तो औलाद का मामला इतना आसान नहीं है। हम तो यूँ समझते हैं कि अभी वो 10-12 साल के होंगे ना, तब हमें उसकी तरफ क्या करना है, ध्यान देना है। नहीं, बहुत पहले से ध्यान देना है। यहाँ तक कि बीवी के पास सोहबत के लिए जा रहे हो, तब शरीयत हमें जो दुआ सिखला रही है उसमें क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मिम्मा रज़क़तना, बुखारी शरीफ में है ये दुआ। जब शौहर अपनी बीवी के साथ सोहबत करने के लिए जाए तो पहले ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान, अल्लाह तो हमको शैतान से बचाइयो, वह जन्निबी शैतान मिम्मा रज़क़तना, और हमें इस सोहबत के नतीजे में जो औलाद तू अता फरमाएगा उसको भी शैतान से बचाइए। यहाँ अभी तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, अभी तो हमल नहीं ठहरा, अभी तो सोहबत नहीं की, और ये दुआ हमको सिखलाई जा रही, वह हमारा जहन बनाया जा रहा है कि हमारी औलाद नेक होगी तो कैसे नेक बनेगी, उसके लिए तदबीरें बतलाई जा रही। यहाँ तक के जब मर्द शौहर अपनी बीवी से सोहबत कर रहा हो, सोहबत के दरमियान जब उसका मादा मनविया उसके बदन से निकल करके बीवी के जिस्म में जा रहा हो, उस वक्त के लिए भी दुआ सिखलाई, जो जबान से पढ़नी नहीं है बल्कि दिल में उसका तसव्वुर करना है। अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतान फीमा रज़क़तना नसीबा, ए अल्लाह तू हमें इस सोहबत के नतीजे में जो औलाद अता फरमाएगा उसमें शैतान का हिस्सा मत रखिए। ये सब दुआएं नबी करीम, आज कौन उन दुआओं का अहतमाम करता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई? मैं तो एक मिसाल दे रहा था। तो बहरहाल औलाद को नेक बनाने का मसला कोई मामूली मसला नहीं है, बहुत अहम मसला है। बड़ी बड़ी संजीदगी के साथ उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमारे हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब नवरल्ला मरकदहू ने आप बीती में लिखा है कि हज़रत के वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास थे, हज़रत शेख की तरबियत में उन्होंने इतना अहतमाम किया, इतना अहतमाम किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हज़रत शेख ने लिखा है कि बचपन में मस्जिद के अंदर अगर कोई दूसरा लड़का दो नमाजों में मेरे साथ सब में खड़ा हो गया तो अब्बा की तरफ से सवाल होता था, ये पहली फुला जोर में भी तेरे साथ ये तेरा खड़ा था ने असर में भी खड़ा है, क्या बात, इतनी निगरानी। हालांकि कभी ऐसा होता है ऐसे ही खड़ा हो गया, लेकिन हजरत की निगरानी। हजरत मौलाना तलहा साहब दामत बरकातहू, अल्लाह ताला उनको सेहत शिफा अता फरमाए, बीमार हैं इस वक्त दुआ कर दीजिए। और जो है उन्होंने खुद मुझे बतलाया वहाँ मदारे उलूम जो लोग गए हैं वहाँ जो है दफ्तर का वाला की इमारत कहलाती है उसमें ऊपर पहले उस तरफ कुतुब खाना है, इधर मेहमान खाना था। हज़रत मौलाना तलहा साहब ने मुझे वहाँ ले जा करके बताया कि जब उनके बाद हजरत शेख छोटे थे तो उनको अब्बा उनको यहाँ से घर जब भेजते थे तो वहाँ खड़े रहते थे, वो जगह मुझे बताई, वहाँ से पूरा रास्ता नजर आता है। और हजरत शेख के घर के अंदर दाखिल होने के लिए कच्चे घर में गली में से जहाँ मुड़ते हैं वहाँ तक, तो कहा जब तक कि ये मदरसे के दरवाजे से निकल कर गली में न मुड़े वहाँ तक अब्बा देखते रहते थे। यानी इतना एहतमाम। आप ड्राइविंग करते हैं ना, हैं ड्राइविंग में कैसा आपका ध्यान है, कहीं भी बात करो लेकिन ध्यान कहाँ होता है। अपने बच्चे की तरबियत के लिए भी 24 घंटे इसी तरह आपको क्या रहना है, चौकन्ना रहने की जरूरत। बच्चा किसके पास बैठता है, किसकी सोहबत में जाता है, सब मालूम। यानी वो तो बड़ा होने अभी से बचपन ही से, आज तो क्या हाल हो गया, बाप जो है घर से जाता है दुकान पर या सर्विस पर, बच्चा सोया हुआ है और जब शाम को आता है तो बच्चा सोया हुआ है। कब उठा, उठ करके कहाँ गया, किन की सोहबतों में रहा, बाप को कुछ भी मालूम नहीं। ये कोई तरबियत के तरीके हैं? आप बीती में हजरत शेख नवरल्ला उमर कदम ने लिखा है कि बराबर निगरानी हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हजरत मौलाना यहिया साहब हजरत शेख के वालिद पर मुतालबा होता था, हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी की तरफ से कि यहाँ आओ रायपुर, क्योंकि हजरत शेख के वालिद हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खादी में खास रहे हैं, तो हजरत गंगोई के जितने भी खुलफा थे सब उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और उनमें से हर एक ये चाहता था कि हमारे यहाँ रहें आकर के। तो हजरत बड़े हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का भी तकाजा रहता था लेकिन वो जाते नहीं थे। तो हजरत शेख ने लिखा है कि एक मरतबा वालिद साहब ने मेरे पास खत लिखवाया बड़े हजरत रायपुरी पर कि अब तक तो जकरिया की बेड़ी मेरे पाँव में पड़ी हुई थी, यानी उनकी तरबियत और तालीम की वजह से मैं आपके पास आ सकता नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ से इत्मीनान हुआ है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपके पास आकर के इतने दिन मेहमान रहूँगा। हजरत शेख खुद फरमाते हैं कि जब वहाँ गए थे तो मैं यहाँ रोज़ाना, यानी सहारनपुर से रायपुर को ज़्यादा दूर नहीं है, रोज़ाना हजरत वालिद साहब पर एक कार्ड लिखता था जुदाई पर। हजरत फरमाते कि मैं गोया झूठी मोहब्बत, ये तो हजरत अपने इसकी तवाज़ु की वजह से ये लिखते हैं। खैर, तो वालिद साहब ने जवाब में लिखा कि माँ बाप की, बाप की निगरानी और तरबियत की उस वक्त तक ज़रूरत होती है जब तक कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा न हो जाए। एक मरतबा अल्लाह का खौफ पैदा हो गया उसकी ज़रूरत नहीं बड़ों की निगरानी। तो भाई ये सब तरीक़े हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमको बतलाए। हम तो अपनी दुकान के लिए जितनी तवज्जो करते हैं कि अपनी औलाद के लिए करते हैं, औलाद का हक कैसे अदा करते हैं। इतवार का दिन आएगा, शनिचर की शाम को या इतवार के दिन जो है गाड़ी में बिठा करके कहीं तफरी गाह पर ले जाएंगे और जो है आइसक्रीम खिलाएंगे, ये खिलाया वो खिलाया और इधर उधर घुमा फिरा करके घर ले आए, गोया हमने बाप होने का हक अदा कर दिया। ये है हमारा बाप के हकूक़ की अदायगी का एहतमाम। भाई बहुत निगरानी रखनी पड़ेगी, 24 घंटे तुम्हारा दिमाग उसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, तभी औलाद की तरबियत कमा हक़ हो सकती है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, हमारे देहातों में बहुत से लोग उन देहातों में रह कर के आए हैं, हमारे देहातों में देहात की औरतें भैंसें पालती हैं, भैंसें, वो भैंस जिस ज़माने में दूध दे रही होती है ना, उसके दूध देने के ज़माने में रिश्तेदारी में अगर किसी दूसरे गांव में जो है शादी है सब लोग जाएंगे, वो औरत नहीं जाएगी कि मैं जाऊंगी ना तो मेरी भैंस किसी दूसरे को दूध नहीं देगी और दो दिन में वो तो मसला ख़त्म हो जाएगा। अपनी भैंस के लिए वो इतनी कुर्बानी देती है कि रिश्तेदारों में शादी में भी जाने के लिए तैयार नहीं, और हम अपने औलाद को यूं ही छोड़ करके पता नहीं अपने दोस्तों में, दोस्तों के पास बैठने का तो हमें वक्त है। मैं कहा करता हूँ 24 घंटे में एक मिनट, हर घंटे में एक मिनट, कितने मिनट हुए 24 मिनट, क्या कोई बाप है जो 24 मिनट अपने औलाद के पास बैठता हो इस हक को अदा करने की नीयत से? कितने हैं, कितने हैं, कुछ नहीं। अपनी औलाद के लिए जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से हम पर डाली गई है उसका कोई अहतमाम हमारे अंदर, ये सब बातें तो बहुत सारी बात की हैं, ये तो पहला मरहला औलाद की तरफ तवज्जो देने का है। हमें वो कमज़ोरी है कि अल्लाह की पनाह, 50 होने वाले हैं जान का होता है। खैर, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था, ये बात तो बहुत तवील है, अगर कुछ 5-10 मिनट बढ़ा दूंगा तो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, 1 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि भाई इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक वाक़या सुनाता हूँ तारीख़ इस्लाम का। खिलाफत राशिदा के बाद सबसे पहली हुकूमत जो इस्लाम में कायम हुई बनू उमैया की। बनू उमैया कुरैश का एक ख़ानदान है, उसकी ये हुकूमत का है। और बनू उमैया के बाद हुकूमत कायम हुई बनू अब्बास की। जो लोग इस्लामी तारीख से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं बनू अब्बास का सबसे पहला बादशाह था अबुल अब्बास सफ्फाह। सफ्फाह अरबी जबान में कहते हैं खून बहाने वाला। यानी बनू अब्बास ने जब बनू उमैया के पास से हुकूमत छीनी थी ना, तो बनू उमैया के ख़ानदान के लोगों को बेदरेक कत्ल किया गया था, और बहुत से वो थे जिनको जेलों में डाला गया। जेलों में इसलिए कि पहले जिस ख़ानदान के पास हुकूमत रही हो उस ख़ानदान का एक भी फर्द अगर मौजूद है ना, तो उसकी तरफ से हर वक्त ख़तरा रहता है कहीं लोग उसको हाथा बना करके हमारी हुकूमत न छीन लें। तो उनके ख़ानदान के लोगों को जेलों में डाला गया। तो जब अबू जाफर मंसूर, ये भी खुलफाए बनू अब्बास में से है, वो जब तख्त हुकूमत पर आया कई सालों के बाद, और उसने ये महसूस किया कि अब बनू अब्बास की हुकूमत मजबूत हो गई है, कोई इसको चैलेंज कर सकता नहीं है, तब उसने बनू मैया के उन लोगों को जो जेलों में डाले गए थे बाहर निकाला। जब लोग कई सालों की जेल के बाद ये लोग बाहर आए, तो उनको किसी ने पूछा कि इतने साल तक आप जेलों में रहे, आपके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह चीज क्या थी? सुन लो जरा कान खोल करके, जिस खानदान के पास इतनी बड़ी हुकूमत रही हो और वो हुकूमत हाथ से निकल जाए, उनके लिए कितने बड़े अफसोस की चीज हो सकती है। लेकिन नहीं, उन्होंने जवाब में क्या कहा, जवाब में क्या कहा कि इतने दिनों इतने सालों तक हम जेल में रहे, अपनी औलाद से दूर रहे, उनकी तरबियत का हमें मौका नहीं मिला, उसका हमें अफसोस है। आज हम घर में हैं, हमारी औलाद हमारे पास है, लेकिन हमें उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो देने का मौका बस। बहरहाल अब वो चंद आयतें जो पढ़ी थी उसमें से पहली आयत की बात तो चल रही थी, एक आयत थी, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो आग कैसी, कुरान में भाई तारा फरमाते हैं वकूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन लोग हैं, इंसान। दुनिया की आग का ईंधन तो लकड़ियां और कोयले होते हैं, और पत्थर हैं उस आग का ईंधन। अरे यहाँ कोई यूँ सोचे कि मैं भाग करके अपने आप को बचा लूंगा उस आग से, तो उसका भी अंदर जवाब आ गया, अरे यहाँ मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, उसके ऊपर निगरानी के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं तो बड़े सख्त दिल और बड़े मजबूत हैं। और फिर लायासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की जर्रा बराबर भी ना खिलाफ। दुनिया के हुक्मरानों को तो कुछ दे दिला के भी मसला हल कर लिया जाता है, वह फरिश्तों को कुछ दे के मसला। एक साहब एक कहने लगे एक साहब के मुतालिक कि वहाँ भी कुछ पैसे दे के निमटा लेंगे। इन्ना लिल्लाह, मैंने कहा दुनिया में पैसे दे के निमटा लेने की जो तबीयत बनी हुई है मिजाज, वो आखिरत के मुतालिक भी ऐसी बेफिक्री में लगे हुए हैं, वहाँ कुछ बनने वाला, वहाँ पैसे ही कहाँ हैं जो देंगे। तो वो लायासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की ज़र्रा बराबर खिलाफ वर्जी नहीं करते, वयफ़लून मा युमरून, और वही काम करते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। दूसरी आयत थी वइबादुर्रहमान, सूरह फुरकान के आखिर में अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की कुछ खूबियाँ, कुछ औसाफ, कुछ उनके सिफात बयान किए। उनमें से एक सिफत ये बयान की, वल्लदीन यकूलूना, वो लोग जो अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से ये कहते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजना मिन ज़ुर्रियात मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुनी, ये हमारे परवरदिगार हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से हमें आँखों की ठंडक नसीब करो। क्या है आँखों की ठंडक? हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में हज़रत क़तादा का कौल नकल किया है कि आदमी जब अपनी औलाद को देखता है कि वो अल्लाह की फरमाबरदार है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगी हुई है, तो उसकी आँखें इसे देख करके क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। तो ये हमारे परवरदिगार हमारी जो है ہماری اولاد اور ہماری گھر والوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، وجعلنا للمتقین، اور ہم کو نیک لوگوں کا سردار بنا، باس بنا، باس، امام یعنی باس. ہم نیک لوگوں کے باس کب بنیں گے؟ جب کہ ہماری اولاد نیک ہوگی تو نہیں. ہم اپنے گھر والوں کے باس ہیں، تو ہم ہمارے بچے، ہماری اولاد نیک ہوگی تو ہم اس کے باس بنیں گے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر جس کے جس کے باس بنے ہیں. سمجھ لو، ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنے بچوں سے ناراض ہو کر غصے میں کہا، اے گدو، تو بچے کہنے لگے، آپ ہمارے ابا ہیں، یعنی ہم گدے ہیں تو آپ گدوں کے باپ ہیں، گدوں کے باپ ہیں. تو بہرحال بات وہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے سردار اور باس اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ ہم نے اولاد کی تربیت کا اہتمام کیا ہو. اور پہلی آیت جو پڑھی تھی، بھائی ام کن تم شہدا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کے وقت کا واقعہ بیان کیا ہے. کیا تم موجود تھے اس وقت جب کہ حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا تھا، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. کتنے؟ ان میں ایک بیٹے حضرت یوسف تو نبی تھے اللہ کے، اور حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی، ان کے ابا حضرت اسحاق وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے ابا حضرت ابراہیم وہ اللہ کے پیغمبر، ابو الانبیاء نبیوں کے باپ، خلیل الرحمن اللہ کے خلیل. چار پیڑھی میں اس طرح یہ نبوت چلی آ رہی ہے. وہ باپ جو ہے اپنے اولاد کو موت کے وقت جمع کر رہا ہے، اور جمع کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یقول اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب، وہ شخص جو تین پیڑھیوں سے جان نبوت، اور یہ جن بچوں کو کہہ رہا ہے ان میں بھی ایک اللہ کا نبی موجود ہے حضرت یوسف، ان کو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تم کی عبادت. بھائی ظاہر ہے نبی تو دنیا میں آتا ہی ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، جس کے گھر کا کام ہی یہ تھا، جس خاندان میں چار پیڑھی سے یہ سلسلہ نبوت کا چل رہا ہے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت، ایمان سکھلایا جا رہا ہے، اس کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، پوچھ رہے ہیں، بات پکی کر رہے ہیں جانے سے پہلے. کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا، وہ بیٹے بھی تو کس کے تھے؟ نبیوں کی اولاد تھی. جواب میں کیا کہا؟ نعبدو الہ، اے ابا جان، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، الہ کا، تمہارا جو رب تھا پروردگار، و الہ آبائے کا، اور تمہارے باپ دادا کا رب. کون اب باپ دادا؟ کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کا پروردگار، الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اس کی پی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکائیں. جب اولاد کی طرف سے یہ اطمینان ملا نا، گارنٹی ملی، تب ان کی روح آسانی سے نکلی. جس خاندان میں چار پیڑھیوں سے نبوت چل رہے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہے. آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، گزر رہے ہیں، چاروں طرف سے ایمان کو ختم کرنے والی محنتیں چل رہی ہیں، چاروں طرف، ہر اعتبار سے، میڈیا کوئی بھی ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے ہماری اولاد سے، اولاد تو کیا، ہمارے بڑوں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش میں. ایسے زمانے میں کیا ہمیں اپنے اولاد کی ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے نا. تو بھائی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا سوچا؟ کیا سوچا؟ ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. یہ تو ان آیتوں کا خلاصہ تھا. اور حدیثیں جو پڑھی، ایک حدیث تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. میٹر بند، میٹر بند ہو گیا. اب آگے نیکی کا سلسلہ، الا من ثلاثۃ، البتہ تین چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ رہتا ہے. کون سا؟ صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا کام ایسا کیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ उठा रहे हैं, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कुआं खोद दिया और कोई काम ऐसा किया, उसके बाद दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को उससे फ़ायदा पहुँच रहा, तो ये सवाब चलता रहेगा। और इल्मिन इंतफा वही, या कोई ऐसा इल्म जिससे लोग क्या रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। और वलदिन सालिहिन यदौला, या नेक औलाद जो अपने बाप के लिए क्या करे, दुआ करे। देखो ये तीसरी चीज़ क्या है, ये नेक औलाद कब बनेगी, जब हम तरबियत करेंगे, इसलिए ज़रूरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनी, किसी बाप ने अपने औलाद को अच्छे आदाब से अच्छा कोई जो है हदिया, कोई गिफ्ट नहीं दी हो। आप अपने औलाद को आला से आला गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो क्या दीजिए, अच्छे आदाब से उनको आरास करें। आप हम तो आज क्या सोचते हैं, मैं खूब पैसे छोड़ के जाऊँ, मेरे मरने के बाद खूब दुकानें चल रही हो, पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, जो है महल नुमा मकानात हो, गाड़ियाँ हो, बैंक और ये सब कुछ हो। लेकिन भाई ये सब कुछ जिसके हाथ में दे के जा रहे हो उसकी तो आप फिक्र करो, अगर उसकी तरबियत नहीं की है तो ये बैंक बैलेंस उसको और जहन्नम में ले जाए। हमने उसको नेक नहीं बनाया है, कोई निगार है, गुनाहों की आदत में पड़ी हुई है, तो आप पैसे छोड़ के जाएंगे तो उस पैसों को कहाँ इस्तेमाल करेगा वो गुनाह के कामों में, गोया ये पैसे उसको और ज़्यादा जहन्नम के अंदर जाने का जरिया बनेंगे। तो असल तो तवज्जो उसकी तरबियत की तरफ देने की, तो बहरहाल इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह तआला तौफीक दे, ये मकतब का सिलसिला जो है ना वो वाकईतन हम आप में से हर एक इस बात की कोशिश करे कि आपके बच्चे ज़रूर मकतब के अंदर जाएं, रोज़ाना उनकी तहकीक कीजिए, और घर में भी जब आवें तो घर में आदाब सिखलाने का अहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को लेकर बैठिए रोज़ाना, कम से कम मैंने जैसा कि कहा 24 मिनट एक घंटे की एक मिनट के हिसाब से रोज़ाना बैठेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो सब। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى بأدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تو ہماری اولادوں کو قائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا دے ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ان اس مجلس میں جن دو بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان دو کو بے انتہا قبول فرما جس طرح ان کے سینوں کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ، اس مکتب کو جو یہاں پر جاری ہے، اے اللہ ہر اعتبار سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس شہر میں بسنے والے تمام مسلمان بچوں کی دینی ایمانی تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمانے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔